Om Shanti. मधुबन पूर्ण शांति का घर है. ओम शांति बोलने की भी जरूरत नहीं, इतनी शांति. जिस शांति में बाबा का प्यार और आनंद दोनों समाया हुआ है, शून्य शांति नहीं, शुष्क शांति नहीं. बाबा की घर की शांति, प्यार, खुशी और शक्ति से भरी हुई शांति. क्योंकि हमें यहां जो भी एकत्रित होकर शांति में बैठते हैं, तो हरेक को पता है कि बाहर से चुप रहकर अंदर क्या करना है. मुख से साइलेंस और मन ही मन, या तो स्व की स्थिति का आनंद या बाबा की याद का आनंद, अंदर से मिलन है, प्राप्ति है, अनुभूति है, वो वाइब्रेशंस वायुमंडल में फैलते हैं. और आज की मुरली में भी बाबा ने सबसे अच्छी है तुम्हारी योग की बत्ती, तपस्या की बत्ती. तपस्या का उत्तम स्थान इस दुनिया में कौन सा है? मधुबन. योग बत्ती. बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा है कि जब से संगम युग में प्रवेश करते हैं, तुम बच्चों को बाबा ने अनादि योग भट्टी का प्रोग्राम दिया हुआ ही है. ऐसा बाबा का व्यक्ति महावाक्य है. उस मुरली में ये था आगे कि तुम बच्चे ऐसे कह नहीं सकते कि बाबा सेंटर में भट्टी रखते ही नहीं थे, जो हम तपस्या करें, पुरुषार्थ करें, भट्टी के प्रोग्राम ही नहीं बनते तो हम अपनी उन्नति कैसे करें. तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को अनादि योग भट्टी का प्रोग्राम मिला हुआ ही है. माना संगम युग में प्रवेश करना अलौकिक जन्म लेना माना ही तपस्वी बनना है. कौन सी तपस्या हमें करनी, वो तो अलग अलग हठ दमन की शरीर की तपस्या करते. आज की मुरली में भी था ना कि हठ योगियों जैसा आसन तुमको नहीं लगाना है, परंतु तुम्हारा साधारण बैठना और योग में बैठने में भी अंतर हो। बहुत अच्छा बाबा ने बताया कि ब्रह्मा बाबा कैसे बैठते, अर्ध पद्मासन। ब्रह्मा बाबा को ऐसी अभ्यास था ना, अर्ध पद्मासन। तुमको ऐसे बैठना है तो योग का नशा चढ़ता है, बाबा ने कहा। अगर हम ढीले ढाले बैठते हैं, कमर सीधी नहीं है ना, उस रीति से थोड़ा बैठने से ज्यादा अवेयरनेस रहती, फ्रेशनेस रहती और लंबे समय तक हम बैठ सकते। मैंने एक तपस्या की मुद्रा भी, जैसे जैसे बाबा बैठते हैं किसी भी रीति है ना, वो भी हमें तपस्वी बनने में या योग करने में मदद करते हैं। वे कमर सीधी रख के बैठे, ठीक से बैठे है ना, तो हमें महसूसता ज्यादा रहेगी कि मैं बाबा की याद में बैठी हूँ। हाँ, फिर भी बाबा के तरफ से वो ही तपस्या नहीं है, वो तो जस्ट एक मुद्रा है, आसन है। कलयुगी शरीर के हिसाब से अब शरीर ही ऐसे हो गए हैं तो बैठना पड़ता है, कोई ना कोई आधार लेते हैं ना हम लोग बैक के लिए है। ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त वाणी में कहा था ना 18 जनवरी वाली मुरली में भी, कि अंत तक कोई आधार नहीं लिया। इसी प्रकार अभी भी निर्मल शांता दादी ऐसी है, मुड़ा भी नहीं लेती अभी तक, चश्मा भी नहीं, वरना हर रीति से वो ताकत वाली है। पर फिर भी हमारी मूल चीज रूहानी तपस्या है। हम ज्ञानी है ये हमें महसूसता है, हमारा विवेक स्वीकार भी करता है कि हम ज्ञानी तू आत्माएं हैं, क्योंकि सत्य ज्ञान बुद्धि में है और रोज की पढ़ाई भी हो रही। मिथ्या ज्ञान और अज्ञान निकल के सत्य ज्ञान अवधारण हुआ है, तो हम महसूस करते हैं हम ज्ञानी तू आत्माएं हैं। हम सेवाधारी है ये भी स्वीकार होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल में हर एक बाबा के बच्चे मन वचन कर्म से और तन मन धन से जितना हो सकता है हर एक सेवा करते। लोग भी बाबा के बच्चों की सेवा को अप्रिशिएट करते। ब्रह्मा कुमार कुमारियों जैसा जिम्मेवारी से अपना समझकर खुशी से मुस्कुराते हुए और कोई सेवा नहीं करते हैं, ये लोग ऐसी सेवा करते हैं, है ना? तो ये भी हरेक का दिल स्वीकार करता है कि हम बाबा के सेवाधारी बच्चे हैं। अब समय अनुसार टोटल अव्यक्त बाप दादा का भी जिस प्रकार से कहना है, अब ये महसूसता हमारी बढ़नी चाहिए कि हम तपस्वी हैं, है ना? हमारे साथ रहने वाले, हमारे साथ काम करने वाले, इवन लौकिक नौकरी धंधा जहां करते हैं, लौकिक घर में जहां हम रहते हैं, हमारे आसपास भी जो रहते हैं, वो आप कहें कि अब ये लोग ब्रह्मा कुमार कुमारिया अब ज्यादा तपस्वी बनते जा रहे हैं, जैसे बाबा के बच्चे बाबा के लिए कहते हैं, दादियों के लिए बड़ों के लिए कहते हैं, जैसे दादियां सुनाती है ना जिन्होंने साकार में पालना ली, कि बाबा अंत में कैसे अव्यक्त होते गए, उपराम होते गए। दादियों का हम सभी कहते हैं कि हम सबके देखते देखते दादियां सच में कैसे फरिश्ता बनती जा रही। ऐसे अब हम सबके लिए लोग कहें कि अब ब्रह्मा कुमार कुमारियां तपस्वी बनते जा रहे, अब ये अंतर्मुखी होते जा रहे, अब ये ज्यादा साइलेंस में रहते हैं, ये रिजल्ट, ये सर्टिफिकेट अब हमें मिलना चाहिए, क्योंकि अब बाकी एक ही काम है, ज्ञान का पूरा विस्तार, पूरी गहराई हम सबके पास है। बाबा ने मूल ज्ञान दिया, रिवाइज किया, उसका भी रिवाइज रिवाइज रिवाइज, माना इतना बाबा ने हमें पूरा ज्ञान सागर ने अपने आप को हमारे पर उड़ेल दिया है ना। तो ज्ञान का सब्जेक्ट परिपक्व लगता है, सेवा भी हम करते हैं दिल से आज तक भी, और उसका रिजल्ट भी देखते हैं। कहां छोटा सा पौधा, हम बताते हैं ना कि हमारा विद्यालय आज बड़ा वटवृक्ष बन गया, कहां बाबा के समय 150 सेंटर आज सारे विश्व में फैल गए, थोड़े से भाई बहने आज 9 लाख हो गए। तो ये सेवा के रिजल्ट है कि हरेक ने थोड़ी 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 कर कर करके आज विश्व के सामने विद्यालय प्रत्यक्ष है। अब जो बाकी है वो एक ही चीज है ना? वो है हमारा तपस्या। अब वो ही हमें ज्यादा करना है, उसी पर अटेंशन देना है। हमारी पहली तपस्या है देहभान से न्यारे रहना, आत्मभान में स्थित होना, ये हमारी पहली तपस्या है। जितना देहभान से न्यारे आत्मभान में हम स्थित होते हैं, सिर्फ इतनी तपस्या हमारे में अलौकिकता लाती है, क्योंकि शरीर लौकिक है। अलौकिक कौन है? आत्मा अलौकिक है, शरीर लौकिक है। शरीर इस लोक से मिला है ना, तत्वों से बना है, तो शरीर लौकिक है। आत्मा इस लोक की नहीं है, तत्वों की नहीं बनी है। आत्मा एक शक्ति है, अलौकिक है। तो जितना हम आत्मभान में रहते हैं हम अलौकिक नजर आएंगे, रूहानी हम दिखाई देंगे। और हमारा नेचुरल कनेक्शन ऊपर हो जाएगा। उनको ये ज्ञान नहीं है भक्ति में, इसलिए उन्होंने दमन किया, इंद्रियों को कष्ट दिया, है ना? उन्होंने तपस्या में क्या किया, कोई मौन कर लेते, कोई आंख बंद करके बैठते, कोई उपवास करते, कोई एक ही आसन में बैठते हैं या खड़े रहते, है ना? उनको वो तपस्या मानते हैं। हमारी तपस्या की सहज विधि बाबा ने हमें बताई कि देह भान से न्यारा होना है तो सिंपल अभ्यास है, खुद को आत्मा समझो, कितना सहज है। तो जितना बार बार, जैसे बाबा ने इस बार की अव्यक्त मुरली में भी यही कहा ना कि कर्म योगी की महसूसता में रहना है तो तुम ये अभ्यास करो कि मैं इस शरीर को चलाने वाली हूँ, मालिक हूँ, राजा हूँ, यही बाबा ने बताया ना। तो हमारी पहली साधना कहो, पहली तपस्या कहो, वो ये है कि हम देह भान से न्यारे रहे। प्रैक्टिस करें, हमें महसूस हो इस मकान में जैसे बैठे हैं और हमें महसूसता है ना कि हम अलग हैं, ऐसे मैं इस गुफा में बैठी हूँ और मुझे महसूस हो कि ये पूरा स्ट्रक्चर अलग है और मैं अलग हूँ। खिड़की से आप देखते हैं तो जो बाहर से देखेगा उनको खिड़की, और खिड़की में आप अलग दिखाई देंगे ना, लोग कहेंगे ना देखो खिड़की में वो प्रमोद भाई देख रहा है, दिखाई देगा ना। तो हम ऐसे अभ्यास करते हैं कि मैं इस आंख से देख रही हूँ बरोबर, पर मुझे ये महसूस हो कि ये खिड़की अलग है और मैं इसमें अलग होके देख रही, माना बार बार अपने को देह से न्यारे करते रहे और आत्मा स्मृति में रहे। इस अभ्यास से ऑटोमेटिक ड्रामा के हर दृश्य में आप साक्षी हो सकेंगे। फिर हर दृश्य में डिटैच होके आप देख सकेंगे। नहीं तो होता है ना, कोई चीज कोई बात देखते ही हम उसके प्रभाव में आ जाते, क्योंकि हम अंदर से डिटैच नहीं। ये एक ही अभ्यास कि मैं इससे अलग हूं, तो ऑटोमेटिक जो भी दृश्य सारे दिन में ड्रामा में आएंगे उसमें आप न्यारा होके देख सके, साक्षी भाव जो बाबा कहते हैं। तो हमारी दूसरी तपस्या है कि प्रैक्टिकल प्रतिदिन के ड्रामा में साक्षी रहना। जीवन में हम वही तो भूल गए थे ना, हम संसारमय क्यों बन गए? संसार में आसक्त क्यों हो गए? लोगों ने तो ये समझ ही लिया कि इस दुनिया में रहना माना इसका प्रभाव लगेगा ही। भक्ति में नहीं गाते हैं कि काजल की कोटड़ी में केसो भी सयानो जाए, एक लीक लागी है कि लागी है कि लागी है। ऐसे भक्ति में संत लोग गाते हैं ना कि काजल की अगर कोई रूम हो, कमरा हो, तो उसमें जो भी जाएगा कहीं ना कहीं उसको काजल लगी जाएगा। ऐसे इस दुनिया में जो आएगा उनको संसार की आसक्ति लग ही जाएगी। बाबा ने हमें राज बता दिया ना कि क्यों लगी, क्योंकि हम देह से अटैच हुए तो देह द्वारा संसार से अटैच हुए। आज दुनिया से आत्मा का संबंध किसके द्वारा है? शरीर द्वारा है ना। शरीर छूटा तो संसार भी छूटा ना। कहते हैं ना, आप मुए मर गई दुनिया। तो आत्मा का इस दुनिया से कांटेक्ट देह द्वारा होता है। वो बॉडी कॉन्शियस थे तो देह दुनिया का प्रभाव आना ही है ना। पर दुनिया के प्रभाव से मुक्त रहने के लिए बाबा ने हमें देह से न्यारा कर दिया। साक्षी भाव में रह सकेंगे, है ना? साक्षी भाव से देखेंगे तो राइट परख सकेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं ना कि साक्षीपन की स्थिति सीट पर सेट होकर फिर आप देखो, त्रिकालदर्शी बनकर आप देखो। ऐसे बाबा कहते हैं ना मुरली। पिछले संडे जो मुरली सुनी उसमें भी बाबा ने कहा है ना, त्रिकालदर्शी बनकर आदि मध्य अंत सोच समझकर कर्म करो। तो दिन भर के ड्रामा में साक्षी रहना ये एक तपस्या है कि कहीं भी हम इन्वॉल्व ना हो जाए, प्रभाव में ना आ जाए। स्व में रहकर फिर हम सब कुछ देखें। देखो स्व आसपास जो कुछ है, शरीर से लेकर आप देखो, हलचल है, परिवर्तन है। अचल कौन है? आत्मा है। शरीर हलचल है, अचल कौन है? मैं आत्मा हूं। तो जब मैं स्व में स्थित हूं तो मैं कितनी भी आसपास हलचल हूं, मैं न्यारा होकर देख सकूंगी और परख सकूंगी कि मुझे इससे कैसे निकलना है, पार होना है। तो सारा दिन साक्षी पर है ना। कभी देखो हम संबंध के प्रभाव में काम कर लेते, कभी फ्रेंड्स के प्रभाव में काम करते, कभी परिस्थिति के प्रभाव में काम करते। आप चेक करो राइट काम कितने हम कर पाते। मुझे पता है संबंधी रॉन्ग है पर मैं उसके प्रभाव में काम करती, फ्रेंड रॉन्ग है पर मैं उसके प्रभाव में काम करूंगी क्योंकि ये मेरे साथ है तो मुझे डिटैच होके साक्षी होके सही हम कहां तक कर पाते परिस्थिति। मान लो 10 लोग भाग रहे यहाँ पीछे, मान लो कुछ हुआ, चूहा बुहा है, 5-10 उठ के दौड़ने लगे भाग, तो आगे वाले भी भागेंगे परिस्थिति के प्रभाव में। खुद को पता नहीं क्या है पर पीछे वाले 5-10-15 उठ के भागे ना तो आगे वाले भी भागेंगे। आप चेक करो सुबह से लेकर रात तक हम स्व में स्थित होकर कितने काम कर पाते, साक्षी भाव कितना रहता है। साक्षी भाव रहेगा तो ही राइट डिसीजन आएगा और राइट काम होगा। नहीं नहीं, मान लो एक तो उसके प्रभाव में आप गलत ना करें, पहली चीज तो वो है। सलाह की बात तो बहुत पीछे है कि पहले खुद ही रंग में न रंग जाओ, पहली बात तो वो है। और दूसरा फिर आपको देखना होगा कि आपका कहना कहाँ तक उचित है, प्रभावशाली रहेगा, कहने योग्य हम हैं या नहीं, कितनी बातें देखनी पड़ेगी। हाँ, कहाँ कहने से राइट रहेगा, तो उसमें बहुत कुछ हमें समझना होगा। पर फर्स्ट तो ये है कि कम से कम मैं उसके संग में गलत न करने लगे। तो ये प्रैक्टिस, पर पहली तपस्या करने से दूसरी काफी हद तक हो जाएगी क्योंकि आत्मा सत्य है। ओरिजिनल स्वरूप में मैं आत्मा सत्य हूँ, शुद्ध हूँ। रत्नमयी दादी सुना रही थी कि शुरू में हम घंटों तक योग में बैठे रहते थे और योग क्या था, हमें ये नशा था कि हम शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा। बड़ा आश्चर्य लगा मुझे सुनकर कि मैं शुद्ध आत्मा, उसमें क्या नशा जो घंटों बैठे रहते थे। पर वंडरफुल है क्योंकि वो आत्माएं ही ऐसी शुद्ध है कि कहते हम घंटों इसी नशे में बैठे रहते थे कि मैं शुद्ध आत्मा। माने कितने लक्षित से न्यारे रहे होंगे तो नशा चढ़ा। तो जितना मैं सत्य और शुद्ध स्वरूप में रहूंगी उतने मेरे राइट परख और राइट डिसीजन आएंगे। तो सारे दिन के कर्म में हमें फायदा हो जाएगा। हमारी तीसरी तपस्या है एक बाबा दूसरा न कोई। दूसरा न कोई का अर्थ ये है कि मेरा बाबा से ही अनन्य प्यार हो। कई बार भाई बहने कहते हैं कि मेरा तो एक बाबा ही है, दूसरा कोई नहीं है, तो दुखी होके कहते हैं कि मेरा दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि जीवन में दूसरे सब संबंधों में स्वार्थ धोखा मिला हुआ है तो ये बात कहते हैं कि मेरा तो एक बाबा ही है बहन जी, दूसरा कोई है ही नहीं। माना वो दुख की फीलिंग से कहा, वो राइट नहीं है। इस कलयुगी दुनिया में हरेक को ऐसा मिला है, सिर्फ आपको नहीं मिला है, हरेक को ऐसा है। कई बार हम क्या समझते हैं, मुझे ही ऐसे मिले हैं, पर आपको ही सिर्फ ऐसे नहीं मिले हैं, सबको ही ऐसे मिले, इसलिए दुखी होने की बात नहीं है। पर मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई, मीन्स कि मेरा अनन्य प्यार बाबा से, बस इतनी लगन बाबा से। बुद्धि में और कोई आकर्षण नहीं, कोई और से आसक्ति नहीं, कोई और की इच्छा नहीं। कई बार बाबा मिलने के बाद भी तपस्या क्यों नहीं है, क्योंकि अभी भी मन कुछ कुछ खोजता है। सूक्ष्म में आप देखो, अभी भी मन कुछ खोजता है, कोई कोई मिले, कोई अच्छा मिले, कोई ऐसा अभी भी मन को खोजे। क्यों? क्योंकि हमने इतना प्रैक्टिकल बाबा से अपने आप को जोड़ा नहीं है। समझ है, ज्ञान है कि बाबा सत्य है, बाबा कल्याणकारी है, बाबा सुखदाता है, और कोई ऐसा नहीं हो सकता। ये नॉलेज है, पर फिर भी दिल से स्वीकार नहीं है। अभी भी अंदर से सूक्ष्म इच्छा है कि कोई और सुख देने वाले मिले। जो दुख देने वाले मिले हैं ना, वो मुझे सुख देवे, ये अंदर इच्छा है अभी भी। इसलिए योग पावरफुल नहीं होता है। जो बाबा कहते हैं ना, लगन में मगन, लव में लीन, और कोई खोज नहीं मन में, फुल पॉइंट, ये सब तब होगा जब बाबा से ही सब कुछ पाने की अनुभूति में हम रहे, ताकि वो चीज खत्म हो जाए कि किसी ने हमें कुछ नहीं दिया, मिला नहीं। तो वो तपस्या, सब कुछ बाबा, एक बाबा, वो ही सब कुछ मेरा, ये तपस्या। अंदर से मुझे अब कोई खोज नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई मुझे ढूंढना नहीं है। अब तपस्या क्या करनी, आप सोचो, तपस्या हमारी कौन सी, यही तपस्या है। अनन्य भाव बाबा के प्रति, वास्तव में वो तपस्या। चौथा है कि कर्मेंद्रियों से जो भी कर्म हो वो श्रीमत अनुसार हो। ये भी एक तपस्या मेरी है, कहते हैं वे तपस्या, इस रेखा के बाहर कदम नहीं रखना। ये तपस्या थी सीता के लिए, इस लक्ष्मण रेखा के बाहर तुम पांव नहीं रखना, माना इस मर्यादा में तुम रहना, सीधी बात। बाबा कहते हैं ना, कुछ भी हो, कितना भी मन में तूफान हो, कर्मेंद्रियों से पाप नहीं करना, वो तपस्या है। कुछ भी हो जाए, कर्म से मुझे गलत नहीं बनना है। ये संयम अंदर से रखना, ये तपस्या है। हर बात में, इसलिए भक्ति में तो कहते हैं ना, आंख की तपस्या, कान की तपस्या, मुख की तपस्या, हाथों की तपस्या, पांव की तपस्या, पता नहीं 9 प्रकार की कोई तपस्या बताते। हर कर्मेंद्रिय की तपस्या। मुख में 2 आता है ना, बोलना और खाना पीना, 2 तपस्या। कई बार हम इनसे भी ऐसे करके इशारा करते, इससे भी पाप करते, तपस्या भंग होती है। माना हर कर्मेंद्रिय का उपयोग होता है कि नहीं, करते हैं ना हम। बाबा कहते हैं एक एक कर्मेंद्रिय से पाप हुए हैं, तो एक एक कर्मेंद्रिय से श्रेष्ठ कर्म करने। तपस्या वो कि कुछ भी हो जाए, कोई भी कर्मेंद्रिय को श्रीमद के विरुद्ध मुझे यूज नहीं करना है। प्रैक्टिकल में वो कंट्रोल रखना, संयम रखना, समझ में स्थिर रहना, वो तपस्या है। जैसे भक्ति में कितना भी कष्ट हो जाए पर नहीं, नियम माना नियम, व्रत माना व्रत, तपस्या माना तपस्या। हाँ, नहीं पीती। आप देखो ना, वो पांव ऐसे हो जाते हैं, खड़े रहते हैं ना, खड़ेश्वरी बाबा होते हैं इनके पांव सूज जाते हैं, सड़ जाते हैं, पर तप। और ऐसे तप का भी बल, बस ये सब उनको तो ज्ञान नहीं है, तो वो ये तपस्या करते। हमारी तपस्या ये है कि हर कर्मेंद्रिय से श्रीमत अनुसार कर्म। आज जो बाबा ने कहा ना, भट्टी योग भट्टी में तो तपस्या में विकर्म विनाश करने, आप और चिंतन करना। आज बाबा ने कहा ना, विचार सागर मंथन करो, बाबा जैसा ज्ञान तुम्हारे में धारण हो, अभी आप और गहरा करना तपस्या चिंतन।
प्रभु का ध्यान।